श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ और मैं उन मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 32 के परिचय को देखा था और हमने यह देखा कि भजन संहिता 32 एक निर्देश का भजन है, निर्देशन का भजन है। तो आज हम उसके अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और एक पद से इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि इस जीवन के द्वारा हम आपको आदर, मान और सम्मान दे सकें। पिताजी, हम कई बार गलतियां करते हैं, हम आपके कार्यों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन आज हम आपसे विनती करते हैं कि जब हम आपके वचन को सीखें तो आप हमारी सहायता करें, ताकि हम वचन को समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, बीमारी अवस्था में हैं, किसी न किसी प्रकार के दबाव में हैं। पिताजी, आप उनकी सहायता करें, उनके जीवन से आप बातचीत करें, ताकि आज के वचन के द्वारा वे अपने जीवन में आपको ग्रहण कर सकें। इस समय हम इससे प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दाऊद ने परमेश्वर से याचना की थी कि वह उसे उद्धार के आनंद में पुनः ले आएगा, तो वह पापियों को परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देगा, और भजन संहिता 32 में वह यही काम कर रहा है। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 32 उसके एक पद को निकाल लीजिए। लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। दाऊद हमें सिखा रहा है कि उसने परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा दान पाकर वह पूर्ण रूप से पुनः स्थापित किया गया था। उसने परमेश्वर के शरण पाई और उसे मुक्ति गीत दिया गया। इस पद में धन्य शब्द का अर्थ है आनंद। भजन एक के अध्ययन में भी हम इस शब्द को देख चुके हैं। पद एक, धन्य है वह जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठड्ढा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता एक का आनंद केवल एक खरा मनुष्य ही उठा सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं खरा मनुष्य नहीं हूँ। भजन संहिता एक प्रभु यीशु के विषय चर्चा करता है, क्योंकि वही एकमात्र खरा मनुष्य था। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता, न खड़ा होता और न बैठता है। यहाँ प्रकट है कि एक खरा मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जिसे हम पद दो में देखते हैं। व्यवस्था दोषी ठहराती है, परंतु वह प्रभु यीशु को दोषी नहीं ठहरा पाई। व्यवस्था के नियम निर्देश मनुष्य को आनंद प्रदान नहीं करते, वह सिद्ध आज्ञा पालन चाहती है जिसे मनुष्य पूरा नहीं कर पाता है, अतः वह मनुष्य को शापित ठहराती है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो सच्चे मन से कह सके कि वह परमेश्वर की व्यवस्था के पालन में सिद्धस्ता को प्राप्त कर लिया है। यदि आप यह कहने योग्य हैं कि आप व्यवस्था पालन में खड़े हैं, तो आप प्रभु यीशु से कह सकते हैं कि वह परमेश्वर के दाहिने ओर से हट जाए, क्योंकि वह आपका स्थान है। आप सिद्ध हो चुके हैं। मेरे मित्रों, न आप और न मैं सिद्ध मनुष्य हैं, केवल प्रभु यीशु ही सिद्ध है। भजन संहिता 32 उसके एक पद में मनुष्य का आनंद उसके पापों की क्षमा है। मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा और अपनी मृत्यु के द्वारा जो पापियों के स्थान में थी उसने परमेश्वर की धार्मिकता को संतुष्ट किया है। अतः अब पवित्र परमेश्वर एक न्यायी एवं उद्धारक परमेश्वर है। वह प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले सब मनुष्यों के लिए न्यायी और न्याय सम्मत है। रोमियो की पत्री 4:5 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्म ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इस प्रकार पुराने नियम के हजारों आदम और हवा से आरंभ करके जो स्त्री के वंश की प्रतीक्षा में थे, उन्होंने प्रभु यीशु के कार्य की पूर्वापेक्षा में ही उद्धार पाया। दाऊद पाप मुक्त मनुष्य के आनंद की चर्चा कर रहा है। हम भजन संहिता 32:2 में पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। परमेश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले पापियों को पाप का दोषी नहीं कहता है। उनके पाप मसीह यीशु पर डाल दिए गए हैं। रोमियो के पत्र 4:25 में यह बात सिद्ध की गई है, वह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह में यह कैसा अद्भुत काम किया है। दाऊद पाप छिपाने का अपना अनुभव सुनाता है। आइए हम पढ़ें भजन संहिता 32:3 को। लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। वह सिंहासन पर बैठा अपनी जनता को देख रहा था और सोच रहा था, यहां तो कोई भी नहीं जानता कि मैंने क्या किया है, मैं पाप छिपाने में सफल हो गया हूं। परंतु उसका विवेक उसे सता रहा था और सच तो यह है कि इस पद में व्यक्त है कि उसकी हड्डियां भी सूख रही थी। वह सूखने लगा था। उसके शुभ चिंतक परेशान थे। उनके विचार में उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता थी। वे सोच रहे थे कि उसे कोई गंभीर रोग है, परंतु वह दिन प्रतिदिन पीड़ा सह रहा था। भजन संहिता 32:4 में लिखा है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की संतान तो हैं, परंतु पाप करना आपके लिए संभव है और आप पाप करके बच नहीं सकते। उद्धार प्राप्त और उद्धार रहित मनुष्यों में यही एक अंतर है। यदि आप सांसारिक मनुष्य हैं तो कुछ समय तो आप पाप करके बचे रहेंगे, परंतु परमेश्वर की संतान के साथ ऐसा नहीं है। दाऊद पर परमेश्वर का हाथ भारी था, दिन प्रतिदिन भारी पड़ता गया। 1 कुरिन्थियों 11:31-32 में पौलुस कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। यदि हम स्वयं को जांचे तो परमेश्वर हमें दंड देगा। परमेश्वर अपनी संतान को दंड देता है। मेरे मित्रों, दाऊद के पाप में गिरने के बाद नातान ने आकर उसे झिड़का और उसे एक घटना सुनाई। 2 सामुएल 12:1-7 में एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था और उसने उसे मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपने भेड़ बकरियों या गैर बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप अर्थात क्रोध मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। यह सुनकर दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया। भजन संहिता 32 के 5 पद में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यह आपके और मेरे लिए एक अच्छी शिक्षा है या नहीं? शायद आप हाँ में कहेंगे। यदि आज आप परमेश्वर की संगति से दूर हैं, तो दाऊद इस पद में लौटने का मार्ग दिखाता है। पहला यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आपने पाप किया है जिसे कोई नहीं जानता है, जिसे आप आज तक छिपाते आए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भजन संहिता 32 के 6 पद में लिखा है, इसी कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। जल की बाढ़, मेरे विचार में यहाँ दाऊद नूह के युग के जल प्रलय का संदर्भ दे रहा है। जल प्रलय के समय नूह नाव में था। वह विनाशकारी प्रलय मनुष्यों का नाश कर रहा था, परंतु नूह को ऊपर उठा रखा था क्योंकि वह नाव में था। दंड का जल नूह तक नहीं पहुंचा था। पृथ्वी पर महादंड का एक और समय आएगा, परंतु इस बार जल से नहीं, आग से विनाश होगा। ऐसे समय में आप क्या करेंगे? मेरे मित्रों, यह निश्चय ही विनाश आएगा, इसलिए आप इससे बच नहीं पाएंगे। भजन संहिता 32 उसके 7 पद में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इस पद का अंत सेला से होता है, जिसका अर्थ है ठहरो, देखो और ध्यान से सुनो। जो कहा गया है उस पर पुनर्विचार करो। सेला संगीत का अंतराल है और मेरे विचार में इस समय संगीत रोक दिया जाता था और गायन मंडली चुप हो जाती थी। यह शांति का समय होता था कि आप गाने के शब्दों पर विचार करें। मेरे मित्रों, आप भी विचार करें, क्या परमेश्वर के साथ आपकी संगति समाप्त हो गई है? क्या आपको छिपने के स्थान की आवश्यकता है? परमेश्वर आपका शरण स्थान है। भजन संहिता 32 उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आपको यदि परमेश्वर की आंखों द्वारा मार्गदर्शन चाहिए तो आपको उसकी अत्यधिक निकट संगति में होना अवश्य है। अब परमेश्वर बड़ी ही विनोदी तुलना करता है। भजन संहिता 32 उसके 9 पद में, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक विश्वासी हैं जो परमेश्वर की इच्छा में परिक्रमा नहीं करते, वे अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें अपने शाश्वत विधान के अधीन लेकर चलता है। जैसा जैसा हमने एस्तेर के पुस्तक में देखा है, वह परमेश्वर की अगुवाई में न रहने वाले विश्वासी की तुलना न समझ गधों से करता है। मुझे एक घटना याद आती है, किसी परिवार ने अपने गधे को गाड़ी में जोतकर अपने मित्र के घर जाना चाहा। गाड़ी में चढ़ने से पूर्व उसके स्वामी ने गधे के सिर पर वार किया। उसके मित्र ने उसके इस काम का कारण पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? गधे के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करता हूँ। हम में से अधिकांश जन उस गधे की नाई हैं। यही कारण है कि धर्म शास्त्र निर्देश देता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। यह भजन पराकाष्ठा पर पहुंचकर अंत होता है। भजन संहिता 32 उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। मित्रों, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आप अपना हृदय महान आनंद से परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने भी उठाया है। यहां पर भजन संहिता 32 समाप्त होता है, और अब हम भजन संहिता 33 में आगे बढ़ते हैं, जिसका विषय है मुक्ति प्राप्त मनुष्यों का स्तुति गान। इस भजन में हम मुक्ति प्राप्त मनुष्यों का स्तुति गान सुनते हैं, परमेश्वर की सृजनहार और कृपालु शासक होने के निमित्त आराधना है, उसकी वैभवशाली और अद्वितीय अनुग्रह के लिए स्तुति की गई है। यहाँ पहली बार संगीत वादों का उल्लेख किया गया है। यह अनाथ भजनों की श्रेणी में एक भजन है, क्योंकि इसके लेखक का नाम नहीं दिया गया है। इस श्रेणी के भजनों में यह एक ऐसा भजन है जिसे शायद दाऊद ने नहीं लिखा है। तो आइए हम भजन संहिता 33 उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होना है। स्तुति का यह एक अति अनुपम भजन है। इसकी शैली दाऊद की है, और संभव है कि उसी ने इसे लिखा हो। भजन संहिता 33 के दो पद में लिखा है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। यहाँ पर वीणा अर्थात उनका 30 से 40 तारों वाला वाद्य यंत्र है। भजन संहिता 33 के 3 पद में आगे लिखा है, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हमें परमेश्वर के लिए नया गीत गाना है। यह नया गीत क्या है? ऐसे अनेक भजन हैं जो भावी नए गीत का उल्लेख करते हैं। मेरे विचार में नए गीत गाने का जब अवसर आएगा, तब नए गायक भी होंगे। उस समय मेरे पास नई देह होगी, और मैं गाना भी गाने के योग्य हो जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में गीत गाने देगा, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। भजनकार हमसे अनुरोध करता है कि हम परमेश्वर की स्तुति का भजन गाएं, क्योंकि वह हमारा सृजनहार है। परंतु हम स्वर्ग में जो नया गीत गाएंगे, वह इसलिए होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सृजनहार है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे, उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। भविष्य में एक नया गीत गाया जाएगा। मेरे मित्रों, इस पद में यह भी लिखा है कि हमें भली भांति बजाना है। मित्रों, मैं यह मानता हूं कि श्रोताओं के समक्ष आपका बजाना निपुण होना चाहिए, आपका गाना स्वरबद्ध होना चाहिए। आज कलीसिया में संगीत की दुर्दशा हो गई है। मैं कलीसियाओं में जाता हूं और देखता हूं कि वहां प्रतिभा रहित गायक हैं। आप प्रशिक्षित संगीतकार ना हो, परंतु आपको निश्चित करना है कि गाना आपको पवित्र आत्मा का वरदान है, जिसे परमेश्वर कलीसिया के निर्माण और लाभ के लिए काम में ले सके। अन्यथा आपका प्रयास व्यर्थ का अभ्यास होगा। जो आप गा नहीं सकते, उसका प्रयास करना व्यर्थ है। भजन संहिता 33 के 5 पद में लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। ध्यान दें, परमेश्वर का वचन और उसके कार्य, अर्थात उसके सृजन कार्य। भजन संहिता 33 उसके 6 पद में आगे हम पढ़ते हैं, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। मैंने एक बार एक गायक का प्रदर्शन देखा। उसने ऊंचे स्वर में गाया तो खिड़की के कांच टूट गए, परंतु परमेश्वर ने अपनी वाणी सृजनात्मक कार्य में उपयोग की थी, विनाशकारी कार्य में नहीं। उसने अपने वचन के द्वारा जगत की रचना की। उसने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक 1:3 पद में हम इसे देखते हैं। उजियाले में सामर्थ है, बिजली की शक्ति और इलेक्ट्रॉनिक शक्ति। क्या आप जानते हैं कि यह सब परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर ने कहकर ही सब सृजित वस्तुएं उत्पन्न की। वनस्पति, पशु और हर एक जीव जंतु परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए। उसके वचन में कैसा अद्भुत सामर्थ्य है। मैं यह तो नहीं जानता कि उसने यह काम कैसे किया, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि उसने ऐसा किया, और यही महत्वपूर्ण भी है। भजन संहिता 33 उसके 10 पद में लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यशाया नबी की पुस्तक 2 उसके 4 पद का नारा चुना है, वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे, तब एक जाति दूसरी जाति के विरोध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध विद्या सीखेंगे। उन्होंने गलत पद चुन लिया है, क्योंकि मैं तो उन्हें तलवारें पीटकर हल्के फाल बनाते हुए नहीं देख रहा हूं। अपेक्षा इसके, वे तो एक दूसरे को ही पीट रहे हैं। उचित तो होता कि उनका नारा भजन संहिता 33 उसका 10 पद होता, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, यह पद अधिक उचित होता। पूर्व काल पर ध्यान दें, 1919 में स्थापित राष्ट्र संघ और उससे पूर्व हेग शांति सभा आदि सब व्यर्थ ठहरे। क्या आप एक और बात जानते हैं? मैं जानता हूं कि आप इस बात पर मेरी आलोचना करेंगे, परंतु यह सत्य है, क्योंकि बहुत से देश उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिए हैं। अपने राज्य, अपने राष्ट्र को वे परमेश्वर के डर में जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। भजन संहिता 33 के 12 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। मैं इस पद को सार्वजनिक प्रदर्शन में रखना चाहता हूं। भजन संहिता 33 के 13 में लिखा है, यह वह स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। परमेश्वर सभी देशों को देखता है, वह आपको भी देखता है, वह मुझे देखता है। उसकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। भजन संहिता 33 उसके 16 पद में लिखा है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। नेपोलियन ने कहा था कि परमेश्वर सबसे बड़ी सेना के साथ है, परंतु उसने स्वयं सिद्ध कर दिया कि वह गलत है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन सबसे बड़ी सेना लेकर भी हार गया था। परमेश्वर तो उनके साथ भी नहीं है जिनके पास सबसे बड़ा बम है। भजन संहिता 33 उसके 18 पद में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। कैसी अद्भुत बात है। भजन संहिता 33 उसके 21 पद में लिखा है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर या उसके नाम का भरोसा रखा है। परमेश्वर में विश्वास रखने पर हमारे मन आनंद से भर जाते हैं। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? आप स्वयं को भजनों से क्यों नहीं भर लेते, इसकी अपेक्षा कि आप नाना प्रकार की सभाओं में संडे स्कूल चलाना, कलिसिया का प्रबंध करना, यह करना वह करना आदि सीखें? आप घर में ही रहकर भजनों को अंतर्ग्रहण क्यों नहीं करते? धर्मशास्त्र के इस भाग से परिपूर्ण होकर आपके मन को शांति ही नहीं मिलेगी, परंतु आपकी 99% कलिसियाई समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। काश आपके लिए यह सार्थक हो और व्यवहारिक बन जाए। यह वचन का परिपूरक भाग है। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप निर्णय लें और ऐसा होने दें कि आप भजन के इस भाग को ग्रहण कर लें और निश्चय जाने कि आप उस महान शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। आप एक निर्णय लेंगे और प्रभु की निकटता में बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य द्वारा, तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा ये